दर्शन की आवाज में संत काव्य आचार्य परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संकलित। पहला, प्रारंभिक युग, संवत 1200 से 1550। संत कबीर साहब। कबीर साहब के सर्वप्रसिद्ध संत होते हुए भी उनके जीवन काल, जन्म, मरण, स्थान एवं जीवन की प्रमुख घटनाओं के संबंध में अभी तक विद्वानों में बहुत कुछ मतभेद दिख पड़ता है। यही बात कुछ अंशों तक उनके मत के विषय में भी कही जा सकती है। उन्होंने स्वयं अपना ऐतिहासिक आत्मचरित्र पाया कुछ भी नहीं दिया है। उनके समसामयिक भी उनकी ओर केवल संकेत करके ही रह गए हैं। उनके पीछे आने वाले लेखकों अथवा आधुनिक विद्वानों के कथन अधिकतर अनुमानों पर ही आश्रित हैं, जिन पर अंतिम निर्णय देना कठिन है। फिर भी सारी उपलब्ध सामग्रियों की छानबीन करने पर जो निष्कर्ष निकलता है, उसके अनुसार उनका संक्षिप्त परिचय दिया जा सकता है। इसके अनुसार कबीर साहब की मृत्यु संभवतः विक्रम संवत की 16वीं शताब्दी के प्रथम चरण में किसी समय हुई होगी। ऐसा मान लेने पर उनकी जन्मतिथि का हमें परंपरागत संवत 1455 से कुछ न कुछ पहले अर्थात 15वीं के द्वितीय व प्रथम चरण तक भी ले जाना होगा। इसी प्रकार कबीर साहब की जाति सभी बातों पर विचार कर लेने पर जुलाहे की तहर ठहरती है। उनका निवास स्थान का भी काशी होना विवादग्रस्त समझ पड़ता है। कबीर साहब के दीक्षा गुरु स्वामी रामानंद समझे जाते हैं और उनके गुरु भाई सेन, पीपा, रैदास और धन्ना संत माने जाते हैं, किंतु इस बात के लिए प्रत्यक्ष प्रमाणों का अभाव दिखता है। स्वामी रामानंद तथा सेन कबीर साहब के बड़े समकालीन, पीपा तथा रैदास छोटे समकालीन तथा धन्ना कुछ पीछे के जान पड़ते हैं और प्रायः सभी समान मत के हैं। इन संतों का स्वामी रामानंद द्वारा किसी न किसी रूप में प्रभावित होना असंभव नहीं। शेख टकी व पीताम्बर का उनका पीर होना बहुत कुछ काल्पनिक ही है। कबीर साहब का सत्य की खोज या सत्संग के योजना क्रम में दूर दूर तक पर्यटन करना और कहीं कहीं कुछ समय तक ठहर जाना भी सिद्ध होता है। कबीर साहब का पारिवारिक जीवन साधारण गृहस्थ के परिवार का जीवन था। वह इसी कारण साधा सीधा और आडंबरहीन था। उनका प्रधान उद्देश्य अपने शरीर को स्वच्छ रखते हुए आध्यात्मिक जीवन का आनंद उठाना था। वे इसी के लिए उपदेश भी देते रहे। उनके था उनके परिवार का भरण पोषण अधिकतर उनकी पैतृक जीविका अर्थात कपड़े बुनने से ही चलता रहा। अंत में उन्होंने कदाचित इसे भी छोड़ दिया था। उनके परिवार में उनकी स्त्री एवं पुत्र का होना प्रायः सभी मानते हैं और उनके साथ उनके माता पिता का भी कुछ दिनों तक रहना स्वीकार करते हैं। फिर भी इनमें से किसी का भी न तो पूरा विवरण मिलता है और न उसके परस्पर संबंध पर वैसा स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। कबीर साहब की बाहरी लोगों और विशेषकर सांप्रदायिक प्रवृत्ति वाले हिंदुओं तथा मुसलमानों से कभी नहीं पती। अंत में उन्हें अपने स्थान छोड़ना पड़ा। प्रसिद्ध है कि अंत में वे काशी छोड़कर मगहर चले गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई। वहां पर उनकी समाधि आज तक वर्तमान है। उपलब्ध चित्रों और कतिपय पदों के आधार पर उनकी अंतिम अवस्था का अनुमान लगभग 100 वर्षों तक किया जाता है, जो असंभव नहीं है। कबीर साहब के शिक्षित होने में संदेह किया जाता है और समझा जाता है कि अधिक से अधिक केवल उन्हें अक्षर ज्ञान रहा होगा, परंतु इस बात को स्वीकार करने में कभी किसी को भी आपत्ति नहीं होती कि सत्संग और आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बहुत कुछ जान लिया था। फलतः अपने अनुभव के आधार पर अपने विचार कभी कभी पद्य रचना द्वारा व्यक्त किया करते थे और लोगों को उपदेश देते थे। उनकी ये रचनाएं इस समय विविध संग्रहों में पाई जाती है और इनकी संख्या कम नहीं जान पड़ती। फिर भी इस प्रकार के संग्रहों के संबंध में बहुधा मतभेद प्रकट किया जाता है और उनमें आए हुए पद्यों के पाठभेद भी अभी तक प्रचलित है। कबीर पंथ के अनुयायियों ने बीजक नामक संग्रह को सबसे अधिक महत्व दिया है। उनका कहना है कि कबीर शिष्य धर्मदास ने इसे संवत 1521 में पूरा कर कबीर वचनों को सुरक्षित किया था, परंतु बीजक की अभी तक न कोई प्राचीन समानिक प्रमाणिक हस्तलिपि प्रति मिली है, न धर्मदास का ही जीवन काल निश्चित रूप से आज तक जाना जा सका है। इसके सिवाय इसमें संग्रहित कई पद्यों के भाव एवं भाषा पर ध्यानपूर्वक विचार करने से भी प्रतीत होने लगता है यह पूर्णतः प्रमाणिक नहीं हो सकता। इसमें संग्रहित कुछ रचनाओं पर परिवर्ती कवियों की कृति होने का संदेह किया जा सकता है। इसके अनेक पद्यों में लक्षित होने वाली भाषा की कृत्रिमता एवं भावों की द्रूढ़ता तथा सांप्रदायिक आग्रह की प्रवृत्ति भी इसके कबीर रचित होने में बाधा पहुंचाती है। फिर भी इसकी रचनाओं के अंतर्गत कबीर वाणियों का एक बहुत बड़ा अंश किसी न किसी रूप में पाया जा सकता है। कबीर साहब की प्रमाणिक रचनाओं का संग्रह न कहे जा सकने पर भी कबीर पंथ का यह सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है और उसके अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। सिखों के आदि ग्रंथ में भी कबीर साहब के लगभग 225 पद और 250 साखियां संग्रहित हैं, जिनका पाठ प्राचीन है। उनमें दीख पड़ने वाले भाषा की प्राचीनता तथा भावों की सादगी एवं स्वाभाविकता उनके कबीर कृत कहे जाने में सहायता पहुंचाती है। परंतु इस संग्रह में आए हुए सभी पदों की प्रमाणिकता में भी हमें तब संदेह होने लगता है जब हम देखते हैं कि इनमें से कुछ अवश्य दूसरों की रचनाएं होंगी, जिन्हें संग्रहकर्ताओं ने क्रमवश कबीर कृत मानकर इसमें स्थान दे दिया होगा। ऐसे पद्यों की संख्या अधिक नहीं है, और यदि वे सावधानी पूर्वक निकाले जा सके तो शेष रचनाओं की प्रमाणिकता असंदिग्ध हो सकती है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित कबीर ग्रंथावली एक तीसरा ऐसा संग्रह है जो पुराने हस्तलेखों के आधार पर तैयार किया हुआ बतलाया जाता है, और जिसकी लगभग 50 शाखें और 15 पद आदि ग्रंथ की वैसी ही रचनाओं के समान है। शेष से भी कई ऐसी हैं जिनकी असमानता का आधार केवल पाठभेद ही कहा जा सकता है। इस संग्रह का पाठ दो पुरानी हस्तलिखित प्रतियों पर आश्रित कहा जाता है, जिनमें से एक संवत 1881 और दूसरी संवत 1561 की है, किंतु दूसरी के अंत में संवत 1561 आदि कुछ बातें अन्य लेखनी से लिखी जान पड़ती है, जिस कारण उसकी प्रमाणिकता से संदेह किया जा सकता है। फिर भी उसमें संग्रहित पद्यों की प्राचीनता और उनकी भाषा उनके अपरिमार्जित रूपों की सहायता द्वारा सिद्ध की जा सकती है। उक्त सभा को अन्य संग्रह भी मिला है जिसका लिपिकाल संवत 1855 जान पड़ता है। इसमें संग्रहित कबीर साहब की रचनाओं की उक्त ग्रंथावली से आए हुए पद्यों से समानता है, तथा इसमें कुछ टिप्पणियां भी दी गई है। इस संग्रह में कबीर कृत पद्यों की संख्या अधिक नहीं है, किंतु इसके दो तीन पद ऐसे भी हैं जो उक्त ग्रंथावली में नहीं दिख पड़ते। कबीर साहब की रचनाओं में ऐसे संग्रह दादू पंथ द्वारा सुरक्षित कुछ प्राचीन हस्तलिपि गुटकों में भी पाए जाते हैं, और उनकी प्रमाणिकता में बहुत कम संदेह किया जाता है। फिर भी इस प्रकार के सभी संग्रहों को एकत्र कर न तो उनका तुलनात्मक अध्ययन अभी तक किया जा सका है, और न इसी कारण कबीर साहब की सभी उपलब्ध रचनाओं का कोई ऐसा शुद्ध संस्करण ही निकाला जा सका है जो पूर्णतः प्रमाणिक माना जाए। प्राचीनता का विचार छोड़ कर दिए गए ऐसे रचना संग्रहों में वेलवेडियर प्रेस प्रयाग की पुस्तकें सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई है, किंतु इन संग्रहों में अन्य संतों या कवियों की भी अनेक रचनाएं भूल के कारण भर दी गई है, जिसका पृथक किया जाना आवश्यक है। पाठ शोध की दृष्टि से इधर कबीर ग्रंथावली के डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर पारसनाथ तिवारी के भी दो उल्लेखनीय संस्करण आए हैं। कबीर साहब की उक्त प्रकार से संग्रहित रचनाओं में प्रधानता पदों तथा साखियों की है। पदों को शब्द वाणी वचन व उपदेश भी कहा गया है, और इसी प्रकार साखियों को आदि ग्रंथ में श्लोक नाम दिया गया है। पदों का रूप वास्तव में गेय रचनाओं का है, और वे अधिकतर भिन्न भिन्न रागों के अंतर्गत संग्रहित भी पाए जाते हैं, किंतु साखियों में दोहे सोरथे अथवा छप्पे जैसे पद भी आ गए हैं। दोनों में कबीर साहब के सिद्धांत उनके हृदयोद्गार तथा साधना संबंधी कतिपय संकेतों की प्रचुरता है। इसी प्रकार उनकी साखियों में अधिकतर ऐसी बातें पाई जाती है जो उनके आध्यात्मिक अनुभव तथा सामाजिक जीवन की प्रमुख बातों को सारांशतः प्रकट करती है। कबीर साहब की अन्य प्रमाणिक रचनाओं में 52 अखड़ी तथा रमैनिया की चर्चा की गई है, जिनके विषय भी प्रायः वे ही है जो उपयुक्त पद्यों में पाए जाते हैं, किंतु जिनकी रचना चौपाई जैसे साधारण छंदों के प्रयोग द्वारा की गई है। कबीर साहब विचार स्वातंत्र तथा सात्विक जीवन के प्रबल समर्थक थे, और उनकी साधना स्वानुभूति स्वद्विचार और सदाचरण से संबंध थी। उनके मत में इसी कारण न तो किसी धर्मग्रंथ का महत्व था, न किसी विधि निषेध अथवा बाह्य पूजन की ही प्रधानता थी। वे वस्तुतः केवल शुद्ध सत्य के पुजारी थे, और उसी की अनुभूति एवं अभिव्यक्ति उनके आध्यात्मिक जीवन का सर्वप्रथम उद्देश्य था। उनकी कथन शैली में कतिपय प्रचलित शब्दों के प्रयोग का विशेष रूप से होता रहना न तो उनका किसी मत विशेष का अनुयायी होना सिद्ध करता है, न केवल इसी एक बात के आधार पर हम उन्हें किसी प्रचलित धर्म या संप्रदाय की सीमा के अंतर्गत आबद्ध कर सकते हैं। उन्हें किसी भी मत के मौलिक सिद्धांतों से कोई विरोध नहीं, और वे उसके अनुयायियों को केवल उन्हीं बातों के उन्मुख होने का परामर्श भी देते हैं। सत्य एक और नित्य और सर्वव्यापी है, उसकी अनुभूति के लिए शुद्ध हृदय और सदाचरण की आवश्यकता है। उसकी ओर सदा उन्मुख रहने पर हमें शांति एकता एवं आनंद का अनुभव होता है, और तभी हम स्वार्थ के परमार्थ के सामंजस्य द्वारा विश्व कल्याण कर सकते हैं। इन बातों को उन्होंने स्पष्ट शब्दों में निर्भीकता के साथ कहा है, और इनके अनुसार न चलने वालों को उन्होंने खड़ी खोटी भी सुनाई है। कबीर साहब की रचनाओं में कई भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्द आते हैं, और उनकी पंक्तियों में प्रायः व्याकरण तथा पिंगल की अशुद्धियां भी मिलती हैं। उनके अनेक पदों में एक से अधिक भाव बिना किसी क्रम के रखे दिख पड़ते हैं, जिनके कारण कभी अस्पष्टता का दोष भी आ जाता है। परंतु सब कुछ के होते हुए भी उसके अधिकांश पद तथा साखियां अपने भाव गंभीर्य ऊंची उड़ान स्पष्ट चित्रण तथा चुटीलेपन में अद्वितीय दिखती है। उनके रूपक उनकी अन्योक्तियां उनके दृष्टांत उनकी अतिशयोक्ति एवं विभावना द्वारा निर्दिष्ट अनोखी सूझे और साधारण क्षेत्र के आधार पर भी कल्पित की गई विविध उल्टवासियां उनकी अपनी विशेषताएं हैं। कबीर साहब की रचनाओं में काव्य कला का प्रदर्शन कहीं नहीं मिलता। उनमें एक अपना निराला सौंदर्य है जो उनकी प्रतिभा के कारण बिना किसी प्रयास के भी आपसे आप फूट पड़ा है। पद अनस्थिर संसार, पहला पद। का मांगू कुछ ठिर न रहाई, देखत नैन चल्या जग जाई, इकलस पूत सवालस नाथी, तारावन धरी दीवा न बाती, लंका सो कोट समंदर सिखाई, तारावन की खबर न पाई, आवत संग न जात संगाती, कहा भयो डरी बांधे हाथी, कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ी जैसे चले जुआरी। दूसरा पद माइक बंधन। माया तंजु तजी नहीं जाई, फिर माया मोहि लपटाई, माया आदर माया मान, माया नहीं तह ब्रह्म ज्ञान, माया रस माया कर जान, माया कारिन तजे परान, माया जप तप माया जोग, माया बांधे सब ही लोग, माया जल थली माया आकाशी, माया व्यापित रही चहु पासी, माया माता माया पिता, अति माया अस्तरी सुता, माया मारी करे व्यवहार, कहे कबीर मेरे राम आधार। मन का दोष, तीसरा पद। मन थिर रहे न घर हुए मेरा, इन मन घर जाड़े बहुतेरा, घर तजी मन बाहिर कियो बास, घर मन देखो दो निराश, जहाँ जाओ तहाँ सोग संताप, जरा मरण को अधिक व्याप, कहे कबीर चरण तो ही बंदा, घर में घर दे परमानंदा। चौथा पद भक्ति का भ्रम। भूली मालिनी हे गोव्यंत जागतो जगदेव, तू करे किसकी सेव, भूली मालिन पाती तोड़े, पाती पाती जीव, जा मूर्ति को पाती तोड़े, सो पाती नरजीव, ताचन हारे तांचिया, दे छाती ऊपर पाँव, जे तू मूर्ति सकल हुए, तो धरन धहारे को खाओ, लादू लावल लापसी, पूजा चढ़े अपार, पूज पुजारी ले गया, दे मूर्ति के मुँह छार, पाटी ब्रह्मा पुहपे विष्णु, फूल फल महादेव, तीनी देवो एक मूर्ति, करे किसकी सेव, एक न भूला दोई न भूला, भूला सब संसारा, एक न भूला दास कबीरा, जाके राम आधारा। पांचवा पद भ्रांत जन। हरिबिन भरम बिगूचे अंधा, जापे जाऊं आपू छुटकाविन ते बांधे बहु फंदा, जोगी कहे जोग सिधि नीकीन, और न दूजी भाई, चुंडित मुंडित मौन जटाधर, एंजु कहे सिधि पाई, जहाँ का उपज्ञा वहाँ बिलाना, हरिपद बिसरिया जब ही, पंडित गुनि सूर कवि दाता, एंजु कहे बरहम ही, वार पार की खबरी न जानी, फिर यो सकल बन ऐसे, यहु मन मोहित के कौ आज्यु, रहियो ठग्य सो वैसे, तजी बाहे दाहिने बिकारा, हरिपद दिट करी रहिए, कहे कबीर गूंगे गुड़ खाया, बूझे टोका कहिए। छठा पद समस्या। संतो धागा टूटा गगन, बिनसी गया सबद जू कहाँ समाई, ए संसा मोहि निस दिन व्यापे, को न कोई न कहे समझाई, नहीं ब्रह्मांड प्यंद पुनि नाही, पंच तत्व ही नाही, इला प्यंगुला सुखमन नाही, ए अवगन कत जाही, नहीं गृह द्वार कछु नहीं तहिया, रचनहार पुनि नाही, जो उनहार अतीत सदा संगी, इह कही किसु माही, टूटे बंधे बंधे पुनि टूटे, जब लग होय बिनासी, काको ठाकुर काको सेव, को कही को जासी, कहे कबीर यहू गगन न बिनसे, जो धागा उन्माना, सीखे सुने पढ़े का होई, जो नहीं पढ़े समाना। सातवां पद गगन रहस्य। कहो भैया अंबर कांसु लागा, कोई जानिंगा जानन हार सभागा, अंबरी दिसे केता तारा, कौन चतुर ऐसा चित्रन हारा, जे तुम देखो सो यह नाही, कहु पद अगम अगोचर माही, तीन हाथ एक अर्धाई, ऐसा अंबर चिन्हो न चिन्हो रे भाई, कहे कबीर जे अंबर जाने, ताही सुमेरा मन माने। आठवां पद चेतने का अवसर। बाती सूकी तेलु निखूटा, मंदलु ना बाजे न तुपे सूटा, बुझ गई अग्नि न निकसयु धुआं, रमी रहिया एकु अवरु नहीं दूजा, टूटी तंतु न बजे रबाबू, भूली बिगाड़ियो अपना काजू, कथनी बदनी कहनु कहावनु, समझी परी तव बिसरियो गावानु, कहत कबीर पंच जो चूड़े, तिन्ही ते नाही परम पद दूड़े। नम्मा पद उपालंब। गोव्यंदे तुम्हें थे दर्पो भारी, सरनाई आयो क्यों गहिए, यहू कौन बात तुम्हारी, धूप डांझते छाँ टकाई, मति तरवर सच पाऊ, तरवर माहे ज्वाला निकसे, तो क्या ले बुझाओ, जे मन जले न जलकू ढावे, मति जल शीतल होई, जल ही माही अग्नि जे निकसे और न दूजा कोई, तारन तिरन तिरन तू तारन और न दूजा जानो, कहे कबीर सरनाई आयो आन देव नहीं मानो। दसवां पद आत्मसमर्पण। मैं गुलाम मोही बिची गुसाई, तन मन धन मेरा राम जी के ताई, अनि कबीरा हाथ उतारा, सोई गाहक सोई बेचन हारा, बेचे राम तो राखे कौन, राखे राम तो बेचे कौन, कहे कबीर मैं तन मन जारिया, साहिब अपना छिन्न बिसारिया। दस पद तक। साखी। सतगुरु समानो को सगा, सोधी सही न दाती, हरिजी समानो को हितू, हरिजन सही न दाती। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिल्या, दीपक दिया हाथी। पासा पकड़िया प्रेम का, सारी किया शरीर, सतगुरु दाव बताइया, खेले दास कबीर। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरन सार। मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आही, अब मन राम ही हुए रहिया, शीश नवाओ काही। तू तू करता तू भया, मुझवे रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। बासुरी सुख न रैनी सुख, न सुख सुरपने नाही, कबीर बिछुटिया राम सू, न सुख धूप न छा। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे, जीवे न बोरा होई, जीवे त बोरा होई। सब रग तंत रबावतन, विरह बजावे नित, और न कोई सुनी सके, केसाई के चित। इस तन का दीवा करो, बाती मेल्यू जीव, लोही सींचो तेल ज्यू, कबूख देखो पीव। सोई आंसू सज्जना, सोई लोक बिनाही, जे लोइन लोही चुए, जानो हेत ही आही। बिरह जलाई मैं जलो, जलती जलहारी जाऊं, मो देख्या जलहरी जले, संतो कहाँ बुझाऊं। हृदय भीतरी दो बले, धुआं न प्रगट होई, जाके लागी सो लखे, केज ही लाई सोई। कबीर तेज अनंत का, मानो उगी सूरज सेनी, पतिसंग जागी सुंदरी, कौटिक दीठा तेनी। अंतरी केवल प्रकाशिया, ब्रह्मवास तह कोई, मन भवरा तह लुभ दिया, जानिंगा जन कोई। मन लागा उन मन सो, उन मन मनगी मिलग, लून लुएन बिलग पानिया, पानी लून बिलग। पानी ही ते हिम भया, हिम हुए गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाय। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देख्या माही। सबे रसायन मैं किया, हरिसा और न कोई, तिल इक घट मैं संचरे, तो सब तन कंचन होय। हेरत हेरत हे सखी, रहिया कबीर हिराय, बूंद समानी समंद में, शोकत हेरी जाय। हेरत हेरत हे सखी, रहिया कबीर हिराय, समंद समाना बूंद में, शोकत हेरिया जाय। नैना अंतरी आव तू, जू हो नैन भपेव, ना हो देखो और कु, ना तुझ देखन देव। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा। कबीर सीप समंद की, रटे प्यास प्यास, समंद ही तिनका बिरी गिने, स्वाति बूंद की प्यास। कबीर हरि सबकु भजे, हरि को भजे न कोय, जब लग आस शरीर की, तब लग दास न होए। मालन आवत देख करी, कलियां करी पुकार, फूले फूले चुनी लिए, काली हमारी बार। बाढ़ी आवत देख करी, तरवर डोलन लाग, हम कटे की कुछ नहीं, पंखेरू घर भाग। फागुन आवत देख करी, बन रूना मन माही, ऊंचे डाली पाते है, दिन दिन पीले ठाही। जो उग्या सो आंथवे, फुल्या सो कुमिलाए, जो चिनिया सो दही परे, जो आया सो जाए। कबीर हरिसु डेट करी, कूड़े चितना लाओ, बांध्या वार सटीक के, तापसु किटी न आओ। काची काया मन अथिर, थिर थिर काम करन, जू जू नर निधड़क फिरे, ट्यूटू काल हसन। जिनी हम जाए ते मुए, हम भी चालन हार, जे हमको आगे मिले, तिन भी बंध्या भार। यहू मन पति की पछाड़ी ले, सब आपा मिटी जाए, पंगुल हुए पीव पीव करे, पीछे काल न खाए, कबीर सुपिने हरी मिल्या, सुनता लिया जगाए, अखिन मीचो डर पता, मति सुपिना हुए जाए, कबीर कैशो की दया, संसा घाल्या खोय, जे दिन भये भगति बिन, ते दिन साले मोय, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही, निंदक नेरा राखियो, आंगन कुटी बंधाए, बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुभाए, कबीर आप ठगाइए, न ठगिए कोई, आप ठग्या सुख उपजे, और ठग्या दुख होय, जो मन मेरा तुझसो, यो जे तेरा होय, ताता लोहा यो मिले, संधि न लखई कोय, कबीर गर्बु न कीजिए, रंकु न हसिए कोय, अजहू सु नाव समंद मही, क्या जाने क्या होय, चरण कमल की मौज को, कही कैसे उन्मान, कही बे कौ शोभा नहीं, देखा ही परवान, चुगे चिटारे भी चुगे, चुगी चुगी चिटारे, जैसे बिच रही कुंज मन, माया ममतारे, कबीर जाको खोजते, पायो सोई ठौर, सोई फिरे के तू भया, जाको कहता और, मुही मरने का चाव है, मरो तो हरि के द्वार, बट हरि पूछे कौन है, पड़ा हमारे बार, हरि है खाड़ू रे तू, वही बिखरी हाथी चुनी न जाए, कही कबीर गुरु बली बुझाई, कीटी होई है खाए, मारी बहुत पुकारिया, पीर पुकारे और, लागी चोट मरम्म की, रहियो कबीरा ठौर, मूड़ों को का रोइयो, जो अपने घर जाए, रोइये बंदीवान को, जो हाथे हाथ बिकाए, समाप्त।